लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम पर हम आपसे विश्व के समस्त ख्रिस्तीय परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि वे बिला शर्त प्रेम का वरण कर सच्चे प्रेम का अनुभव करें और अपने दैनिक जीवन के हर स्तर पर पवित्रता में अग्रसर होते जाएं। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित सूक्ति ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। यह ग्रंथ सभी मनुष्यों के लिए प्रज्ञा का आमंत्रण है। जो अपरिचित की जमानत देता वह हानि उठाएगा, और उत्तरदायित्व अस्वीकार करने वाला झंझट से बचता है। सहृदय नारी का सम्मान होता है और परिश्रमी व्यक्ति को धन प्राप्त होता है। श्रोताओ, ये थे सूक्ति ग्रंथ के 11वें अध्याय के 15वें और 16वें पदों में निहित शब्द। विगत सप्ताह इन्हीं पदों की व्याख्या से हमने पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। इन पदों में संपत्ति का दुरुपयोग न करने की सलाह दी गई है। मनमाने ढंग से संपत्ति के उपयोग के प्रति सचेत कराया गया है। स्वार्थ के लिए या फिर नाम कमाने के लिए यदि व्यक्ति ऐसा करता है तो वह निरा मूर्ख है, यही इन पदों का अभिप्राय है। फिर यह ध्यान में रखना अति आवश्यक है कि जो कुछ हमारे पास है वह सब ईश्वर का दिया हुआ वरदान है, जिन्होंने हमें यह निर्देश देने की शक्ति सुरक्षित रखी है कि हम अपने वरदानों का उपयोग कैसे करें। हम अपनी संपत्ति के मालिक नहीं हैं, हम केवल उसके भंडारी मात्र हैं। ईश्वर ने अपने कानून के अंतर्गत हमारे हितों को भी रखा है। उनका ध्यान करने पर हमें मार्गदर्शन मिलेगा कि हम क्या करें और क्या नहीं। ईश्वर की कृपा से ही हम दान देना सीखते हैं और उदार मना बनते हैं, और ये उदारता सबसे पहले अपने ही घर से शुरू होनी चाहिए, अर्थात परिवार में, अपने आस पड़ोस रहने वालों के संग तथा कार्यालयों में अपने सहयोगियों के संग सभ्य आचार व्यवहार जरूरी है। यही है उदारता, अन्यों के साथ विनम्रता से पेश आना। हमारा ऐसा व्यवहार ही हमें विवेकी और अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति बनाता है। दूसरी बात जो उक्त पदों में रेखांकित की गई है वह यह कि हम जल्दबाजी में किसी अजनबी की गारंटी नहीं दें, किसी की जमानत नहीं दें, क्योंकि इससे हम अपने आप की और अपने परिवार की हानि करते हैं। किसी की मदद करना बहुत अच्छी बात है, किंतु परिस्थिति को परख कर ही किसी की मदद की जाए। हमारा कोई कार्य हमारे आसपास रहने वालों के लिए खतरा न बने, इसका ध्यान अवश्य रखा जाए। दूसरी ओर लेखक कहता है कि एक ओर वे लोग हैं जो जल्दबाजी में किसी की जमानत देते हैं, तो दूसरी ओर वे लोग हैं जो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते और सोचते हैं कि ऐसा कर उन्होंने झंझट से पीछा छुड़ा लिया, जबकि उत्तरदायित्व निभाना सबका कर्तव्य है। फिर 16वें पद में सहृदय नारी की चर्चा है। वास्तव में एक दयालु महिला की निशानी यही है कि उसमें सम्मान और गरिमा की भावना हो। सहृदय नारी वह होती है जो अपनी विनम्रता और अपनी लज्जा, अपने विवेक और अपने सद्गुणों द्वारा मनुष्यों के बीच मिलनसार होती है। साथ ही जो व्यक्ति परिश्रम करता है उसे धन मिलता है, यानी कि वह सुख समृद्धि का जीवन बिताता है। वह आलस और बेकारी से दूर रहकर अपना और अपने परिवार का जीवन सुखमय बनाने में सफल हो जाता है। वस्तुतः परिवार को सुखी रखने का मानो इन पदों में एक नुक्सा दिया गया है। वही परिवार सुखी होता है जहां पत्नी दयालु, विनम्र और समझदार होती है तथा पति ईमानदार और परिश्रमी होता है।
तेरे ही अंश है सभी ये आसमान, ये जमीन, ये जीवन भी तेरी कृपा है, तेरी दया से धरती थमी। तेरे ही अंश है सभी
आगे 17 से लेकर 19 तक के पदों में लेखक कहता है, जो दूसरों पर कृपा करता वह अपना हितकारी है, किंतु निर्दय अपनी ही हानि करता है। दुष्ट की कमाई विश्वसनीय नहीं होती, किंतु जो न्याय बोता उसे सच्चा प्रतिफल मिलेगा। धार्मिकता जीवन की ओर ले जाती, किंतु बुराई करने वाला मृत्यु की ओर बढ़ता है। श्रोताओं, दयावान व्यक्ति सदैव भलाई सोचता है और ऐसा कर वह केवल अन्यों का ही नहीं अपितु अपनी आत्मा के लिए भला करता है, क्योंकि जो व्यक्ति दयालु होता है, जो अन्यों पर दया करता है, वक्त आने पर उस पर भी दया दिखाई जाती है। वह मन में शांति का एहसास पाता है, उस पर प्रभु ईश्वर की कृपा सदा बनी रहती है, जैसा कि हम सामुएल के दूसरे ग्रंथ के 22वें अध्याय के 26वें पद में पढ़ते हैं। भक्त प्रार्थना करता है, तू निष्ठावान के लिए निष्ठावान है और अनिंद्य के लिए अनिंद्य। सूक्ति ग्रंथ का लेखक कहता है, जो दूसरों पर कृपा करता वह अपना हितकारी है, किंतु निर्दय अपनी ही हानि करता है। दयालु व्यक्ति की करुणा की चर्चा की जाती है, क्योंकि उसका प्रेम ईश्वर के आदेशों के अनुकूल है, जबकि जो व्यक्ति निर्दय है, जिसमें दया नहीं है, वह अपनी ही हानि करता है। जो दूसरों के प्रति निर्दयी और क्रूर है, वह खुद अपनी परेशानी का कारण बनता है, क्योंकि संत मत्ती रचित सुसमाचार के 7वें अध्याय के 2 पद के अनुसार, जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हें भी नापा जाएगा। 18वें पद में लेखक कहता है, दुष्ट की कमाई विश्वसनीय नहीं होती, किंतु जो न्याय बोता उसे सच्चा प्रतिफल मिलेगा। श्रोताओ, यह जानकर भी कि दुष्ट मनुष्य कपटपूर्ण कार्य करता है, परंतु जो धर्म का बीज बोता है उसे निश्चय ही भला प्रतिफल मिलेगा, हम मनुष्य दुष्कर्मों में लगे रहते हैं, क्योंकि ऐसा करना सरल जान पड़ता है। धोखा, बेईमानी दुष्टता का प्रमाण है, फिर भी मनुष्य सरलता से इसमें पड़ जाते हैं। इसी के प्रति सूक्ति ग्रंथ का लेखक सचेत कराता है। दूसरी ओर बुद्धिमान और ईमानदार व्यक्ति जानता है कि काम को ईमानदारी और सत्य निष्ठा से किया जाना चाहिए। जो लोग अपना काम धार्मिकता से यानी कि ईश आदेशों के अनुकूल करते हैं, ईमानदारी और सत्य निष्ठा के साथ करते हैं, वे अपने कर्मों का सुफल देखेंगे। उनका नेक काम बोए गए अच्छे बीज के सदृश है, जो उनके लिए सुख, शांति और आनंद का कारण बनेंगे। 19वें पद में भलाई और बुराई, धर्म परायणता और धर्म के बीच अंतर दर्शाकर इस बात पर बल दिया गया है कि जो लोग भले कर्मों में लगकर जीवन पथ पर आगे बढ़ते हैं, वे भरपूर जीवन का अनुभव पाएंगे, जबकि जो लोग बुराई में लगे रहते हैं, वे मृत्यु की ओर यानी कि असफलता और असंतोष की ओर अपनी यात्रा तय करते हैं। लेखक कहता है, धार्मिकता जीवन की ओर ले जाती, किंतु बुराई करने वाला मृत्यु की ओर बढ़ता है। श्रोताओं, धार्मिकता जीवन की ओर ले जाती है कहकर राजा सुलेमान ने इसी तथ्य को स्पष्ट करना चाहा है कि व्यक्ति सुमार्ग पर चले व ईश नियमों के अनुकूल अपना जीवन यापन करे, क्योंकि उसी में उसका कल्याण है। उनका तर्क यह रहा कि जैसे सूरज पूर्व में उगता है, उसी प्रकार धर्म का मार्ग जीवन का मार्ग है। एफेसियों को प्रेषित पत्र के 4 अध्याय में संत पॉल लिखते हैं कि व्यक्ति व्यक्ति अपने अज्ञान और हृदय की कठोरता के कारण ईश्वरीय जीवन से बहिष्कृत हो जाते हैं। 19वें पद में बुराई में संलग्न लोगों के विषय में वे लिखते हैं, वे नैतिक बोध से शून्य होकर लंपटता के वशीभूत हो जाते हैं और उनमें हर प्रकार के दुष्कर्म की लालसा निवास करने लग जाती है। फिर भलाई में लगने का परामर्श देते हुए लिखते हैं, मसीह के शिष्य होने के नाते हमें सत्य के अनुसार कार्य करना चाहिए। 4:23 पद में लिखते हैं, आप लोग पूर्ण रूप से नवीन आध्यात्मिक विचारधारा अपनाएं और एक नवीन स्वभाव धारण करें, जिसकी सृष्टि ईश्वर के अनुसार हुई है और जो धार्मिकता तथा सच्ची पवित्रता में व्यक्त होता है। इस प्रकार श्रोताओं, सूक्ति ग्रंथ धर्मी और अधर्मी, बुद्धिमान और मूर्ख, दयालु और क्रूर के बीच अंतर दर्शाकर पाठकों और श्रोताओं का मार्गदर्शन करता है।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। कुस्तुनतुनिया के ग्रीक ऑर्थोडॉक्स कलीसिया के प्राधिधर्माध्यक्ष के प्रतिनिधियों से मुलाकात करते हुए संत पापा फ्रांसिस ने वर्षों से जारी ख्रिस्ते एकता प्रक्रिया के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया तथा विभाजित ख्रिस्तों के साथ मेल मिलाप करने की आवश्यकता पर जोर दिया, विशेषकर ऐसे समय में जब दुनिया क्रूर एवं मूर्खतापूर्ण युद्ध का सामना कर रही है। संत पापा ने कहा, आक्रमण की एक क्रूर एवं मूर्खतापूर्ण युद्ध में कई ख्रिस्ते एक दूसरे से लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि संघर्ष में विभाजित ख्रिस्तों के बीच मेल मिलाप ही शांति के साधन के रूप में मदद दे सकता है। संत पापा ने संत पेत्रुस एवं संत पौलुस के महापर्व के एक दिन बाद बृहस्पतिवार को कुस्तुनतुनिया के ग्रीक ऑर्थोडॉक्स कलीसिया के प्राधिधर्माध्यक्ष के प्रतिनिधियों से वैटिकन में मुलाकात की। एक लंबी परंपरा का अनुसरण करते हुए प्रतिनिधि इस सप्ताह रोम में हैं, ताकि कैथोलिक एवं ऑर्थोडॉक्स कलीसिया के बीच एकता स्थापित करने में मदद दे सकें। संत पापा फ्रांसिस ने ख्रिस्ती एकता को बढ़ावा देने का प्रोत्साहन दिया है। उन्होंने 30 जून के ट्वीट संदेश में लिखा है, सिनर्ड जिसको हम अभी मनाने के लिए बुलाए गए हैं, हमें एक ऐसी कलीसिया बनने के लिए आमंत्रित करता है जो दुनिया के साथ मुलाकात करने हेतु बाहर जाती, एक कलीसिया जिसमें हरेक स्वागत किया गया महसूस करता, जहां सुनने, वार्ता करने और भाग लेने की कला को पवित्र आत्मा के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अपने दूसरे ट्वीट संदेश में संत पापा ने बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करने का आह्वान किया है। उन्होंने लिखा है, आइए हम एक साथ बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करें जो अपने लोगों की जड़ एवं यादगारी के प्रतीक हैं, कि उनका अनुभव एवं प्रज्ञा युवाओं को भविष्य की ओर आशा एवं जिम्मेदारी के साथ देखने में मदद दे। वैटिकन ने संत पापा फ्रांसिस के प्रेरितिक संविधान प्रेडिकाते एवेंजेलियम का आधिकारिक अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित किया। नए प्रेरितिक संविधान प्रेडिकाते एवेंजेलियम का आधिकारिक दस्तावेज रोमन कुरिया कलीसिया एवं दुनिया के 5 भाषाओं में उपलब्ध है। इताली भाषा के साथ साथ इसका अंग्रेजी, स्पानी, पुर्तगाली और अरबी भाषाओं में अनुवाद किया गया है। अगले सप्ताह इसे फ्रांसीसी, जर्मन और पोलिश भाषाओं में भी प्राप्त किया जा सकेगा। इसके 250 अनुच्छेद एक लंबी सुनवाई प्रक्रिया का परिणाम है, जिसकी शुरुआत 2013 के कॉन्क्लेव से पहले आम सभाओं से हुई थी एवं संत पापा फ्रांसिस के मार्गदर्शन में कार्डिनलों की परिषद के द्वारा विश्व की विभिन्न कलीसियाओं के सहयोग से जारी रही। नए प्रेरितिक संविधान की प्रकाशना 19 मार्च को संत जोसेफ के महापर्व के साथ हुई थी और इसे 5 जून को लागू किया गया। दस्तावेज को संत पापा जॉन पॉल द्वितीय द्वारा 1988 में प्रकाशित पास्टर बोनस के स्थान पर प्रकाशित कर परम धर्माध्यक्ष रोमी कार्यालय में सुधार प्रक्रिया के लिए जारी किया गया है। नया संविधान कोरिया को अधिक मिशनरी संरचना प्रदान करता है ताकि यह स्थानीय कलीसिया एवं सुसमाचार प्रचार को अधिक से अधिक सेवा दे सके। दस्तावेज में कहा गया है कि रोमन कुरिया पोप एवं धर्माध्यक्षों के बीच एक दल नहीं है, बल्कि दोनों के स्वभाव के अनुरूप दोनों की सेवा के लिए है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि कुरिया के सदस्य भी मिशनरी शिष्य हैं। सिनोडालिटी को कुरिया के लिए काम करने के रास्ते के रूप में अपनाया गया है। यह इस बात को भी दर्शाता है कि लोक धर्मियों समेत हर एक व्यक्ति संत पेत्रुस के प्रतिनिधि की शक्ति के आधार पर रोमन कुरिया के प्रशासन की भूमिका के लिए नियुक्त किया जा सकता है। संत पापा फ्रांसिस ने परिवार दिवस के मद्देनजर उरुग्वे धर्म प्रांत को एक संदेश भेजा है एवं हर एक व्यक्ति से अपील की है कि परिवार के प्रत्येक व्यक्ति की देखभाल की जाए। परिवारों की विश्व सभा जो 22 से 26 जून तक वैटिकन में संपन्न हुए, उसे धर्म प्रांत स्तर पर पूरे विश्व में मनाया गया। रोम में विश्वभर के करीब 2000 परिवारों ने भाग लिया। परिवारों के लिए विश्व दिवस के अंत में संत पापा फ्रांसिस ने उरुग्वे के लिए एक वीडियो संदेश भेजा है, खासकर संत जोश दिमायो धर्म प्रांत के लिए। अपने संदेश में संत पापा ने विश्वासियों का अभिवादन किया है एवं उनके लिए अपनी प्रार्थनाओं का आश्वासन दिया है। संत पापा ने परिवार के महत्व पर जोर देते हुए कहा है, परिवारों की देखभाल करें, परिवारों की रक्षा करें, क्योंकि वहां जीवन है, इतिहास है। वहां हम प्रत्येक के लिए ईश्वर की चाह मौजूद है। जब वे इस दुनिया में आए तब उन्होंने परिवार में जन्म लेना चाहा। संत पापा ने अपने छोटे संदेश को उरुग्वे के विश्वासियों को यह प्रोत्साहन देते हुए समाप्त किया कि वे बिना भय आगे बढ़ें। यद्यपि यह आसान नहीं है, किंतु परिवार के साथ यह बेहतर है। अंत में उन्होंने कहा, ईश्वर आप सभी को आशीष प्रदान करे, कुंवारी मरियम आपकी रक्षा करे, कृपया मेरे लिए प्रार्थना करना ना भूलें। कारितास स्पेन को लिखे एक पत्र में संत पापा फ्रांसिस ने उदास संगठनों के कार्यों के महत्व पर प्रकाश डाला है तथा प्रोत्साहन दिया है कि वे 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आत्म परख करें। संत पापा फ्रांसिस ने कारितास स्पेन के कार्यों की सराहना की है एवं कलीसिया के मानवीय दान विभाग से अपील की है कि वह जरूरतमंद लोगों की सेवा करती रहे जब संगठन अपना 75वां वर्षगांठ मना रहा है। कारितास स्पेन के अध्यक्ष मानुएल ब्रेतोन रोनेरो को प्रेषित संदेश में संत पापा ने लिखा, कारितास स्पेनिश की स्थापना के 75वें वर्षगांठ मनाने के अवसर पर मैं आपको एवं संगठन के सभी सदस्यों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं भेजता हूं। समारोह का आदर्श वाक्य है, दूसरों के लिए 75 वर्षों का प्रेम। संत पापा ने कहा, यह एक सेवा है जो वर्तमान में प्रदान की जा रही है और आशा के साथ भविष्य के लिए खुली है। यह जानते हुए कि कितने दुख भोगने वाले लोगों में क्रूस पर चढ़ाए गए मसीह के चेहरे दिखाई देते हैं, जिन्हें मित्रता, सहायता एवं सांत्वना प्रदान करना है। संत पापा ने कारितास को निमंत्रण दिया कि वे जयंती को ईश्वर को धन्यवाद देने एवं पवित्र आत्मा के संचालन में नए रास्ते की परख करने हेतु एक उपयुक्त अवसर के रूप में लें। संत पापा ने पत्र में तीन विशेषताओं की ओर इंगित किया जिनको उदार कार्यों के लिए निर्णय लेते समय नहीं खोया जाना चाहिए। संत पापा ने कहा, गरीब और वंचित लोग सुसमाचार के विशेषाधिकार प्रापक हैं। वे ईश्वर के हृदय में खास स्थान प्राप्त करते हैं। हम अपने हृदय पर उनके दस्तक की प्रतीक्षा नहीं कर सकते, बल्कि उनसे मिलने के लिए हमें बाहर निकलना है, उनकी भलाई एवं पूर्ण विकास की खोज करना है, उनकी प्रतिष्ठा एवं अधिकारों को पहचानना है। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।